نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذا ربك ألا تعبد إلا إياه اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی کی عبادت نہ کی جائے سوائے اسی کے یعنی رب کا پہلا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اس میں بھی نہیں ہو سکتا ہی ہے یعنی ہر حال میں ہر موقع پہ اللہ ہی کے نام کو اللہ کی ذات کو بڑا رکھا جائے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں عبادت کا کانسیپٹ بہت ہی مختصر ہو گیا اور ہم نے الحمدللہ کبھی اللہ کے ماں سوا کے لیے نماز نہیں پڑھی ہم میں سے کسی نے بھی شیطان کو سجدہ نہیں کیا الحمدللہ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لفظ عبادت کا اگلا درجہ اطاعت ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کہ خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم خاص تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم صرف اللہ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں ہم صرف اللہ ہی کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں یعنی جو چار پانچ ریچولز ہیں جس کو آج ہم فائیو پلرز آف اسلام کے نام سے بھی جانتے ہیں اس سے مراد صرف یہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے مراد اللہ کی اطاعت بھی ہے اللہ کی بندگی بھی ہے اور اس کی غلامی میں آنا بھی ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ہم نے اللہ کی رحمت سے جب سے آنکھ کھولی ہے اس وقت سے ہمارے گھروں میں لا الہ الا اللہ کا نام ہے ہم اپنے آپ کو اہل توحید سمجھتے ہیں ہم اپنے نام کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی ایسا لفظ لگاتے ضرور ہیں کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ ہم اللہ والے ہیں یا ایمان والے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ عبادات تو صرف اللہ کے لیے کیا وجہ ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ حج عمرہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے لیکن اطاعت اللہ کے لیے نہیں ہے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ہم نے لفظ عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا آج ٹاپک موضوع بندگی کا نہیں ہے اس لیے میں اس پہ زیادہ بات کرتی لیکن الحمدللہ اس پہ بہت کچھ بات کہی سنی گئی ہے آپ کے میرے لیے صرف آج کی اس محفل میں پہلا نقطہ اپنے سوچنے کا یہ ہے کہ میں اپنے آپ سے پوچھوں پہلا سوال خود سے یہ کیجئے میں بھی کرتی ہوں اور آپ بھی کریں کیا میں اللہ کی بندی ہوں کیا میں صرف اللہ کی عبادت کرتی ہوں کیا میں اللہ ہی کی بات مانتی ہوں اور کیا میں اللہ ہی سے ڈرتی ہوں کیا میری ساری امیدیں اللہ سے ہیں کیا میرا سارا خوف اللہ کی طرف ہے کیا جتنا مجھے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے اتنا کسی اور کا بھی ہے کیا اللہ کو راضی کرنے کی جتنی کوششیں ہیں اتنی ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ اس طرح کے آٹھ دس اور سوال خود سے کر کرا کر آپ اور میں خود سے پوچھ لیں کہ کیا یا کا نا بدو کا معاملہ ٹھیک ہے پہلا حکم اور یاد رکھیے کہ یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت 23 میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہاں سے احکامات کا ایک ایسا خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جس کو لوگ احکام اشرا کی صورت میں تورات کے 10 کمانڈمنٹس کی طرح سے بھی جانتے ہیں اور قرآن پاک میں اس قسم کے بہت سارے الحمدللہ گلدستے موجود ہیں کہ دین کی جو بیسکس ہیں جو ریچولز ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیسے کرنا ہے کتنا کرنا ہے یہ سب کچھ مختصر سے طور پہ ایک ایک رکوع میں یا اس سے زائد میں بتایا گیا ہے ہم علم لیے بغیر جب عبادت کرتے ہیں تو اس کا بعض دفعہ یہی نقصان ہوتا ہے کہ ہم ظاہری طور پہ عبادت گزار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ہم اس سے زیادہ نہیں بڑھتے الحمدللہ لا الہ الا اللہ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس طرح کے نعرے اور دعوے ہم سب لگاتے سنتے آئے بس تھوڑا سا علم لیجئے کیونکہ انما یخش اللہ من عباده العلماء ہماری قوم جیسی قوم کوئی نہیں اس امت جیسی امت آج بھی کوئی نہیں مسلمان جیسا انسان دنیا کے تختے پہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان کو آپ دنیا میں کسی ایک بھی اچھے کام میں مبتلا نہ دیکھیں کوئی ایک اچھا کام نہ بھی کرے پھر بھی مسلمان جیسا دنیا میں انسان کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جب علم نہیں ہوتا اس وقت آپ دیکھیے کہ علم کی کمی ہے और इल्म की कमी को आप ऐसे कह लीजिए कि जैसे जिस्म में पानी की कमी होती है, जिसको आप और मैं डिहाइड्रेशन कहते हैं। डायरिया क्यों होता है बच्चे को कि उसके पेट का पानी कम हो जाता है? सारा कुछ जिस्म में होता है, लेकिन पानी की कमी की वजह से अंतड़ियाँ सूखने लगती हैं, मैदा काम नहीं करता और जिस्म की ग्रोथ रुक जाती है। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की ग्रोथ रुकी हुई है। इस वक्त हमें इल्म के पानी की इतनी ज़रूरत है कि अगर हर दिन 8-10 बार भी हम इस जुमले को दोहरा लें तो यकीन कीजिए कि हक अदा नहीं होगा। और वो जुमला क्या है कि मुझे इल्म का पानी लेना है। अगर हमने अपनी नस्लों की आबियारी ना की, इल्म का पानी, और इल्म भी कौन सा, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये इल्म जो आसमान से उतारा गया। बार बार कुरान पाक में अल्लाह सुबहान तआला इस इल्म को, वही को बारिश से ताबीर करते हैं। किसी बस्ती में अगर बारिश नहीं होती तो कितनी खुशहाली होगी। किसी दूसरे मुल्क से गंदम मंगवा लेंगे, किसी दूसरे मुल्क से कुछ चीज़ें ले लेंगे, महंगाई हो जाएगी लेकिन कौम मरती नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये बात बड़े गौर से कहने और सुनने वाली है, और वो क्या है कि जिस तरह अपने मुल्क में खुशहाली होती है तो अमूमन बाहर वालों से मदद तलब की जाती है कि आइए और हमारी मदद कीजिए। यही आज उम्मत मुस्लिमा के साथ हुआ। हमने जब इल्म के इस पानी को अपने ही उम्मत से रोका कि जो कुरान और सुन्नत का इल्म था, जो वही इलाही का इल्म था, जिसके पीछे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कोना कोना छान मारा, ये वो इल्म था जिसको पाने के लिए अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु भूखे प्यासे बैठे रहते थे। असहाबे सुफ़ा के 70-80 लोग जो थे जिन्होंने उस दौर में अपने आप को डिवोट कर दिया था, ये सारे उस इल्म के पानी के साथ ग्रो अप हुए। अल्लाह के नबी सल्लम ने जो उम्मत तैयार की, जो कौम तैयार की, उसका सबसे बड़ा कारनामा क्या था कि वो बंजर नहीं थी। उस दौर की माँ भी जब बच्चे को लोरी देती थी, लोरी देना तो बड़ी बात की बात है, अभी पेट में बच्चा आबाद में आता था, मन्नत पहले मान ली जाती थी। और उम्मे मरियम की तरह इन्नी नज़र तुला का माफ़ी बतनी मुहर्ररा, कि अल्लाह मैं अपने पेट के बच्चे को तेरे नाम पे आज़ाद करती हूँ। ये पता ही नहीं है कि होना क्या है, बेटा के बेटी और शौहर भी दुनिया से चला गया। ऐसी औरत तो आज के दौर में मज़लूमियत का शिकार हो जाती है, सेल्फ पिटी, हाय मेरे सर पे तो मर्द ही नहीं, कमाने वाला कोई नहीं, और वो कह रही है कि अल्लाह पेट के बच्चे को अपना नहीं समझूंगी, इससे कोई माशी उम्मीदें नहीं लगाऊंगी। ऐसी माएँ थी उस दौर की। और इमाम बुखारी की माँ का आपने कई बार किस्सा सुना होगा, पेट में बच्चा है और कहती हैं कि जो बच्चा आएगा अल्लाह ताला उसको तेरे नबी की हदीस लिखने पे लगाऊंगी। आज इस दौर में 2018 से 10 साल पीछे जाइए, पिछले 10 सालों में आपने कितनी औरतों के बारे में ये सुना कि वो कहती हैं कि जो बच्चा पेट में है ये अल्लाह के नबी के दीन की हिफाजत के लिए रहेगा। हमें तो इसलिए डिवोर्स के फैसले सुनने पड़ जाते हैं कि बेटा नहीं हुआ, जिनकी औलाद नहीं होती दूसरी शादी मर्द कर लेते हैं। हमारे यहाँ औलाद का हसूल किस लिए? बुढ़ापे का सहारा, और पानी पिलाएंगे, और इनकी नस्लों को हम पालेंगे, और सबसे बढ़कर हमारी करोड़ों खरबों अरबों की जायदादों का वारिस करेंगे क्या इसका? एक सिस्टर एक मौके पे आई, उस दिन मुझे पहली दफ़ा इसका एहसास हुआ कि इंसान के पास जब दुनिया की दौलत होती है और मकसद नहीं होता तो उसको समझ ही नहीं आता। अपनी ज़िंदगी में तो इंसान अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेता कि ठीक है अल्लाह ने मुझे दिया मैं इस्तेमाल करता हूँ, बात के लिए हमेशा लोग यही सोचते हैं कि औलाद को देंगे, यही बात है ना। एक सिस्टर मेरे पास कहीं आई, बहुत अच्छी खातून थी, घर सुना उसके बाद कहने लगी एक सवाल है। मैंने कहा जी ज़रूर, जो भी मुझे पता होगा बता दूँगी, नहीं पता होगा तो किसी और का पता दे दूँगी। कहने लगी कि मैं और मेरे हस्बैंड हैं, हमारे पास बहुत सी जायदाद है, बाहर के मुल्क में थी, यहाँ भी है, बाहर भी है, अपने मुल्कों में भी बहुत है। अब एक फ़िक्र सताए रहती है कि अगर हम दोनों चले गए, जब चले जाएंगे तो इतनी दौलत का करें क्या, होगा क्या इसका? तो मैंने उनको देखा कि शायद ये मुझसे मसला पूछना चाह रही हैं। मैंने उनको थोड़ा सा विरासत की बात बताना चाही, लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या था कि जब बच्चे नहीं होते तो फिर पैसों का क्या करते हैं। मैंने कहा सिस्टर आप क्यों इंतज़ार करती हैं कि आप ना रहें तो पैसों का हो? कहने की मैंने सुना है कि जब बच्चे अपने नहीं होते तो शायद भांजे भांजियों और इधर उधर वालों को मिल जाता है और उनको हम पसंद नहीं करते, सोच भी लिया चलो थोड़ा बहुत हम दे देंगे लेकिन ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि ये सारा ही उनको चला जाए। यानी बात समझिए, पैसा है, दिल नहीं कर रहा कि उनको दे। तो मैंने कहा इसका बहुत अच्छा आसान हल है, कोई बड़ी बात ही। मैंने उनको थोड़ा सा हिंट दिया कि आप अपने इस पैसे को मरने का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं, आप इसको दुनिया में भी दें, आपको दुआएँ मिलेंगी, आपकी उम्र भी लंबी होगी, रिश्तेदारों को दें। गरीबों को दें, आप बेरोजगारों को दें, आप किसी दीन के काम पे लगा दें। मैंने उसको पांच छह चीजें बताई। यकीन करें, वो ऐसी मासूम बहन थी कि ऐसे उसकी आंखें खुली थी। कहती, मैंने तो आज तक कभी ये सोचा भी नहीं कि ऐसे भी अपना पैसा इस्तेमाल करते हैं। कहती, अच्छा आज जाके मैं अपने हस्बैंड से बात करूंगी, क्या आप लोग नूरुल कुरान के लिए कुछ ले लेते। मैंने कहा, हमने नहीं लेना, आपने लेना, आप चाहती हैं, आपको किसी जगह अपने दीन का काम करना कराना है। कहने लगी कि मुझे आज ये सोच जो मिली है, मैंने आज तक कभी सोची नहीं। उस दिन मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ था कि हमें अपनी औलादें दीन और इस अल्लाह के रास्ते से बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। ज़िंदगी में वो बात माने ना माने, हम उनको फिर भी लाखों करोड़ों दे के जाने को तैयार हैं। लेकिन बात क्या है, आज इस उम्मत का हाल ऐसे क्यों बिगड़ा? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर तक ये सब कुछ गवर्नमेंट की कस्टडी में था। दीन के नाम पर उलमा को, शयूख को, दीन की दरसगाहों को, मदरसों को, जो दरासात थी उनको सब को गवर्नमेंट टेक केयर करती थी। किसी की जरूरत नहीं थी कि उसके अंदर कोई अपनी मर्जी की बात ले दे। उसके बाद जब उम्मत का जवाल शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे पैसा लगा, नहीं लगा तो इल्म पे नहीं लगा। मुझे कल कोई बता रहा था, आपके इस मुल्क के बजट में बहुत कम पैसा तालीम पे रखा गया, ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ों पे लग रहा है। ये बात एक अलग है। इस वक्त सिर्फ इस बात को लेकर आगे चलिए, मैं और आप, हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना भी कमा लें। हमारे पास लाखों नहीं थे, हज़ारों थे तो लाखों में बदले, अगर हज़ार थे कुछ किया तो करोड़ों में बदल जाएंगे। इस पर ज़ीरो ही बढ़ रहे हैं ना। देखिए, सौ और हज़ार में एक ज़ीरो का फ़र्क है, ऐसे ही है कि दो का होता है, एक का फ़र्क है। एक हज़ार से एक लाख में एक ज़ीरो और बढ़ गया, तो एक लाख से एक करोड़ में फिर ज़ीरो बढ़ गया। आप एक को गिरा दें, एक को गिरा दीजिए, आप एक हैं। गौर से सुनिएगा, आपका दिल बड़ा उदास होगा इस मिसाल को सुनने के बाद। आप एक हैं, ज़िंदगी का आगाज़ आपके हस्बैंड या आप जो भी अपना कैरियर बिल्ड करते हैं, शुरू में दस हो गए। आप खड़ी रहीं, वक्त के साथ मेहनत की, दुनिया कमाई, सौ हो गए। जिस दिन आपका ये एक गिरेगा, पीछे क्या रह जाएगा? ज़ीरो। किसी का एक ज़ीरो, किसी के दो ज़ीरो, किसी के तीन ज़ीरो, छः ज़ीरो होंगे तो मुझे पता है लाख होता है, सात ज़ीरो हो जाएंगे तो करोड़ हो जाएगा शायद, अगर मैं गलत नहीं कह रही। आप जिस दिन गिरेंगी, आप और मैं जिस दिन इस दुनिया से खड़े होने की बजाय लेटेंगे, जिसको कह लीजिए कि आखिरी बार हम खड़े होंगे ना, उसके बाद हम कभी नहीं खड़े हो सकेंगे, उसके बाद हमारी सारी बिलोंगिंग्स विरसा बन जाएगा। आज मेरा है, कल मेरा नहीं रहेगा। बहुत भी वसीयत करके जाऊंगी अपने बाद के लिए तो 100 में से 33 रुपये 33 पैसे 33 आने 33.33% मेरा होगा। आज घर जाकर ज़रा सा सोचिएगा इन चीज़ों पे। आप और मैं आज क्या क्या रखते हैं, हमारे पास क्या कुछ है, इन में से सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपकी मेरी औलाद, रूहानी औलाद, ज़ाती औलाद, रज़ाई औलाद कह लीजिए। हमारे यहाँ रज़ाई औलादों का रिवाज नहीं है। अरब कल्चर में ये बात आम थी कि अपना बच्चा नहीं होता था तो वो किसी के बच्चे को अपना बच्चा बना लेते थे, और ज़ात के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें सामने आ जाती थी जो कि नसब से आती हैं। चलिए उसको एक साइड पे कर देते हैं। आज मेरे आपके दुनिया से जाने के बाद हमारे पीछे क्या है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला औलाद वालों की औलादों को सलामत रखे। सच बताइए, क्या हम अपनी औलादों की ऐसी खूबसूरत तरबियत कर सके कि वो बाद में हमारे लिए दुआएं करने वाली और हमारी ज़िंदगी में हमारी बात मानने वालियाँ हों? देखिए, ज़िंदगी में आपके बच्चे आपकी बात ना माने कि आपकी मौत का सदमा एकदम उनको आपका खिदमत गुजार और आप पे मरने मिटने वाला बना देगा। आज एक नमाज ना पढ़े आपके कहने के बावजूद, कल मरने के फौरन बाद क्या वो पांच वक्त के नमाजी हो जाएंगे? नहीं। और अगर आज वो आपकी ज़िंदगी में नेकी की तरफ नहीं है तो क्या आपकी मौत का इतना बड़ा सदमा होगा उनको कि वो उनको एकदम नेक बना देगा? दिल तो अल्लाह किसी वक्त भी बदल सकता, लेकिन आपकी मेरी सबसे बड़ी नेमत, बड़ी दौलत औलाद है। और अपने माल को अपनी औलादों पर लगाएं किस चीज़ में? उनकी तालीम और तरबियत में। आज के दौर में एक प्रोफेशन सिर्फ एक बच्चा लेता है, सिर्फ एक प्रोफेशन, आप उसको मेडिकल कह लीजिए, इंजीनियरिंग कह लीजिए, आप उसको कोई एक ऐसा पेशा जिसके बाद वो फिर रोजी रोटी कमा सकता है। मेरा जाती गुमान है कि अब लाखों में नहीं, करोड़ों पे बात जा चुकी है, और अगर आप उनको आला तालीम के लिए बाहर भी भेजते हैं तो फिर ये फिगर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को वो बच्चे नहीं बनाया कि जिनकी ज़ुबान पे वो जुमले हों जो इस आयत में बगले हिस्से में वालदैन के हकूक़ के तौर पर अल्लाह सुबहान तआला बयान करते हैं कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्या, आपके रब का ये फैसला है कि मेरे सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी सिवाय उसी के, वबिल वालिदैनी एहसाना, और अपने वालदैन के साथ एहसान कीजिए। ये एहसान अरबी वाला एहसान है, उर्दू वाला नहीं। उर्दू में एहसान क्या कहते हैं? हम कहते हैं जी किसी ने आपके ऊपर एहसान किया, यानी मोर देन योर राइट, किसी को उसके हक से ज़्यादा देना। अरबी ज़ुबान में एहसान का मतलब ये नहीं होता। वजह क्या है? क्योंकि अरबी ज़ुबान बहुत वसी ज़ुबान है। एहसान का लफ्ज़ हुसन से है, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई योर मैटर विद देम। अब माँ बाप के साथ एहसान कैसे किया जाए? पहली बात है, ट्राई योर बेस्ट, दी बेस्ट। आज आप देखिए कि जहाँ पेरेंटिंग को हम देखते हैं, माँ बाप इतनी एफर्ट भी करते हैं, जिन माँ बाप ने अपनी औलादों को दीन से नहीं जोड़ा हुआ, उनके बच्चे उनके आगे आजिज नहीं है। देखिए, याद रखिए कि मैं नहीं कहती कि हमेशा आप ही के बच्चे गलत होंगे और हमेशा आप ही ठीक होंगे। ये बात सच है कि माँ बाप हमेशा मुखलिस होते हैं, ये बात सच है कि माँ बाप हमेशा सबसे ज़्यादा हरीस होते हैं कि औलाद को खैर मिले, दीन की भी मिले, दुनिया की भी मिले। किसी ने एक दफ़ा किसी को कहा कि अगर अल्लाह ताला इख्तियार दे दे कि तुम एक दुआ कर दो तो तुम क्या दुआ करोगी? बात समझिए, ऐसी बात है, कहने की होता वाता नहीं है, लेकिन अगर अल्लाह किसी को पूछ ले कि बोलो एक काम तुम्हें मैं कहता हूँ जो तुम कहोगे मैं करूँगा, तो कहा उसके जवाब में एक औरत ने कहा कि मैं अल्लाह से कहूँगी मैं अपने बच्चे का नसीब खुद लिखूँगी। अब वो नसीब में आपको क्या लिखेगी? ये कभी ना गिरे, इसको कभी खांसी ना हो, ये कभी रोए ना। आप ज़रा न्यू बॉर्न बेबी से तो सोच सकते हैं। माँ तो ये सोचती है, और 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला क्या सोचता है? वो इंजेक्शन भी लगवाता है, वो बंदे को ज़िंदगी में धूप छाँव में से भी गुजारता है। आपके बच्चों में से ज़िंदगी में किसी को कोई तकलीफ़ आई हो, कोई सदमा आया हो, जिस्मानी रूहानी कल्बी, अल्लाह ने असल में आपकी और उसकी तरबियत करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ज़िंदगी के तजुर्बात से तरबियत पा जाते हैं। वक्त बेहतरीन उस्ताद है, हादसा बेहतरीन उस्ताद है, अगर आप उससे सबक ले लें। लेकिन अमूमन बहुत कम लोग हैं जो ज़िंदगी में ठोकर खाने के बाद अपना रास्ता बदल लें। आज यहाँ पर मैं अपने बच्चों की जिस रंग ढंग में तरबियत करते हैं उसको सामने रखिए, और फिर देखिए बच्चे कैसे हैं। मैं पूरे शऊर से कहना चाहती हूँ कि बच्चे उसकी निस्बत जो हम उनके साथ कर रहे हैं बहुत अच्छे। कितनों को बात समझ आई है? देखिए, बच्चा जवान हो जाता है ना, तब माँ बाप को एहसास होता है, वो भी कब? जब अल्लाह की किताब खुलती है, कि वैसे नहीं बच्चे पाले जैसे पालने चाहिए थे। हमारी भाग दौड़ हमारी उनकी दुनिया बनाने की थी। देखिए, 7 बजे स्कूल के लिए उठाएंगे तो 5 बजे नमाज के लिए नहीं उठाएंगे, तो बच्चे का क्या कसूर? बच्चे को तो अब 7 बजे भी नहीं उठाएंगी तो वो फिर भी जाग सोता ही रहेगा, ऐसे ही है ना। दैट मीन हमने अपने बच्चों को उस तरह नहीं रेस किया जैसे रेस करने की ज़रूरत थी। इसके बरक्स आप देखिए कि जब बाहर के माहौल का असर होता है ना, तो दिन ब दिन अब ये महसूसात बहुत ज़्यादा हो गए कि बच्चे की बात दुरुस्त है और माँ बाप की बात कम दुरुस्त है। गलत ना भी कहें ना, तो बच्चे का फ़ैसला दुरुस्त था। मुझे एक साथी हैं तो उन्होंने कहा कि आपको पता है आजकल के ड्रामों का थीम क्या है? मैंने कहा आप ही बता दीजिए अगर आपको बहुत शौक़ है बताने का। कहने लगी जब हम ड्रामे देखा करते थे तो उस वक़्त ये दिखाते थे कि जो फ़ैसला माँ बाप करते हैं वो अच्छा होता है। और मुझे भी याद है कई ऐसे फिल्म ड्रामों की झलकियाँ होंगी जिसमें बच्ची घर से भागी, फिर खूब रुली खुली, मारें खाएं, और उस लड़के ने उसकी नाकदरी की, फिर रोती भी बाप के दर पे आ गई, अब्बा माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी इज्जत को बट्टा लगाया था। तो वो कहते हैं बेटा तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। ये थीम आपने कई ड्रामों फिल्मों में देखा होगा कि बच्चे अगर भाग दौड़ करके अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर लेते थे तो वो गलत अंजाम होता था। कहने लगी अब ऑपोजिट है, अब क्या दिखाते हैं कि बच्चे जहाँ कहते हैं वहाँ शादी करो, और बच्चों ने खुद से फैसला किया, कहते हैं बड़े खुश रह रहे हैं। इसके ऑपोजिट क्या दिखाते हैं, फोर्स मैरिजेस। पता नहीं अब आप में से देखते होंगे तो ऐसा है कि नहीं, मुझे बहरहाल ये रिवायत पहुँची कि मोस्टली आज मीडिया से ये असर दिया जा रहा है कि बच्चों का फैसला दुरुस्त होता है, माँ बाप का कम होता है। हम ना तो इस वक्त बच्चों के हक में बात कर रहे हैं, ना माँ बाप के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। बात इतनी है, जिसने पैदा किया है उसने बता दिया कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इयाहु बिल वालिदैनी एहसाना। माँ बाप के साथ एहसान का मामला करो, हुसन के साथ मामला करो। और एहसान की बहुत सारी किस्में हो सकती हैं, इनमें से एक किस्म जो कुरान पाक ही में अगले हिस्से में बता दी वो क्या है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर या जब पहुंच जाए इनमें से कोई एक या दोनों ही, औ किलाहुमा, बुढ़ापे में पहुंच गए, यानी तुम जवान हो वो बूढ़े हैं, तो फला तकुल्लहुमा उफ, तो उनको उफ ना कहो। दो लफ्ज़ हैं, देखने में दो लगते हैं वैसे तीन हैं, फा दो दफ़ा। हज़रत अली कहते हैं कि अगर उफ से भी कोई छोटा लफ्ज़ होता डिक्शनरी में तो अल्लाह ताला वो भी बयान करते हैं। और किसी ने कहा कि उफ कहने से उनके दिल का चिराग बुझ जाएगा, एक फूंक सी निकलती है ना मुँह से, लाइट सा सेंटेंस है, ये उफ भी ना कहो। वला तनहर हुमा, और उनको डांटो नहीं, झिड़को नहीं। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनके लिए नरम बात कहो। अगर आप गिन रहे हैं ना तो आप पीछे से मुड़कर फिर देख लीजिए, फला तकुल लहुमा उफ, ला तनहर हुमा, वकुल लहुमा कौलन करीमा, तीन तो हो गई। चौथी, वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर्रहमा, और झुका दो उनके लिए ज़िल्लत के बाजू रहमत से। जैसे परिंदे ने कभी उड़ना होता है ना तो वो अपने दोनों पर सुकेड़ता है, फिर ये अल्लाह का एक प्रोसेस है कि उसके परों के नीचे हवा जमा होती है, फिर वो उठता है तो वो हवा उसको ऊपर उठाती है। कभी आपने जहाज़ के चढ़ते वक्त उसके परों को देखा हो तो आप इस फॉर्मेशन को देख सकते हैं, यानी जिनको बुलंदियाँ चाहिए उनको अपने पर सुकेड़ने पड़ेंगे। बकुर रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, और कह दीजिए कि रब इन दोनों पे रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझ पे रहम किया था जब मैं छोटा था। पांच बातें हो गई हैं। अब ये एहसान की पांच मुख्तलिफ शक्लें हैं। अगर आप देखें बॉडी लैंग्वेज, ज़ुबान का इस्तेमाल, फिर बातचीत करने का तरीका, और सबसे बड़ी बात रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, ऐ रब इन दोनों पे रहम फरमा। मैं इस एक दुआ के ऊपर जब गौर करती हूँ तो मुझे इतना कुछ इसमें से नज़र आता है। मैं सोचती हूँ कि इस दुआ को अगर हम खोलें ना तो कई सफ़ों की दवा बन जाए, क्योंकि जब उलमा कराम इस लफ्ज़ रहम को खोलते हैं ना तो इसमें दुनिया और आखरत की हर भलाई आ जाती है। मसलन आप देखिए कि अल्लाह के नबी की एक दुआ थी, या हय्यु या कय्यूमु बिरहमति कस्तगीस, ऐ जिंदा और ऐ थामने वाले मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। क्या पता चला रहमत क्या, यानी इसको आप समझिएगा, माँ बाप पे रहम क्या है। एक जुमले में बोलने की कोशिश करती हूँ, जिंदगी के जिस दौर में उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वो अता कर दे। बीमार है तो सेहत दे दे, परेशान है तो परेशान दूर कर दे, उनको कोई बात टैकल नहीं करनी आ रही तो उनको टैकल करवा दे। और ज़िंदगी में आप देखिए बहुत सी ऐसी ज़रूरियात होती हैं जो इंसान किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, इतनी जामे इतनी खुली दुआ है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊं, आप अपने लिए दुआ करते हैं कितना टाइम लगेगा, क्या क्या मांगेंगे। अच्छा अब आप अपने लिए दुआ करेंगे, क्या मांगूँ क्या ना मांगूँ, फिर उसके बाद बहन के लिए मांगनी है, बस आपकी तीन बहनें हैं, हर बहन का एक अलग मसला हो सकता है ना, कोई बीमार है, किसी के बच्चे ठीक नहीं, किसी का कुछ है, किसी की शादी नहीं, कोई गरीब है। अब तीन बहनें हैं आपकी, चार आप हो गए, तीन आपके भाई हैं मिसाल लीजिए, अब तीन और हो गए तो आठ हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपके मामू हैं, चार मामू हैं आपके, अब चार खाला भी हैं, चार इनको कि ये तो 25-30 रिश्ते बन गए, मैं किसके लिए मांगू, मैं किसके लिए ना मांगू। अब मैं आपको एक तरीका सिखा रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे करें। आप दिल में अपने माँ बाप को लाएं और क्या कहें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कैसे? तसव्वुर में अपनी सारी ज़रूरतें रख लें और अपने लिए सोचें। देखिए ये बात तो पत्थर पे लकीर की तरह आप लिख सकते हैं कि अगर आपको कुछ मिलता है ना तो आपसे ज़्यादा आपके माँ बाप को खुशी होती है। इज़ इट ट्रू? आप अपनी सारी ज़रूरतें दिल में रखें और कहें रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कैसे? कि अल्लाह मुझे कुछ मिला तो माँ बाप को खुशी होगी, मेरी कोई मुसीबत, मेरी कोई तकलीफ, कोई बीमारी, परेशानी दूर हुई तो किसको खुशी होगी, और अगर मेरे लिए अल्लाह सुभाना तआला ने कोई खैर का मामला कर दिया तो किसको खुशी होगी। ठीक है, अब आप दोबारा यही बोलते हैं। अब क्या हुआ, बहन को सोचिए, एक को, उसकी सारी परेशानियां जहन में लाएं। अब आप क्या मांगे, हो सकता है आपको कुछ याद रहे, कुछ नहीं, कोई आपके इल्म में हो, कोई उसकी तलब ना भी इल्म में हो। आप कह रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, क्या सोच के, मेरी बहन को अगर कोई खैर मिली तो किसको खुशी होगी, माँ बाप को होगी। आप अपने पूरे ख़ानदान के लिए दुआ कर सकते हैं, ननिहाल के लिए करें तो माँ को सोच लें, और ददिहाल में दादा फूफी चचा जो भी रिश्ते हैं उनको लें तो बाप को सोच लें। और एक तो आपको उस रिश्तेदार को दुआ कर देने का अजर, दूसरा आपको अपने माँ बाप के लिए दुआ करने का अजर है। इतनी मुख्तसर सी ये दुआ है कि इस खूबसूरत तरीके से खैर की सारी किस्मों को जमा कर लेती है। ये सारा कुछ कौन बताता है? ये अल्लाह का दीन बताता है, अल्लाह के दीन से ये बातें समझ आती हैं। और आप याद रखिएगा कि जिस पर अल्लाह का रहम हो गया वो बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की रहमत में आ गया। अब एक सवाल पैदा होता है जो बड़ा ही जेन्युइन है, गुज़रते वक्त के साथ माँ बाप पहले से ज़्यादा चिड़चिड़े, बाज़ दफ़ा बदज़ुबान, बाज़ दफ़ा गुस्से वाले हो जाते हैं, और वजह भी समझ आती है ना। जो बंदा खुद अपना काम कर सकता है, अपनी हिम्मत है, वो कुछ कर ही लेगा। तो जब वक्त के साथ कमज़ोरियाँ बढ़ती हैं, जब वक्त के साथ ताकतें कमज़ोरियों में बदलती हैं, खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो बदमिजाजी बढ़ जाती है। आप अपने बूढ़े माँ बाप में से जिसको भी बदमिजाज देखे, वल्लाहि रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा से बड़ी दुआ कोई नहीं है। हत्ता के नज़ा की सख्ती माँ बाप पे भी आनी है, आप पे मुझ पे भी आनी है। आप अल्लाह से इस सोच के साथ के अल्लाह ये ज़िंदा रहें, सुकून से ज़िंदा रहें, ये दूसरों की खुशी का ज़रिया बने, दूसरे इनकी खुशी का ज़रिया बने। देखिए बच्चों की तरबियत हो सकती है, माँ बाप की तरबियत नहीं हो सकती, इस पे तो आप हैंड्स अप कर दीजिए। कमज़ोर दरख्त है, जड़ी बूटियाँ हैं, आप उनको तोड़ें फोड़ें, इधर से उधर करें, काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी मजबूत दरख्त को हटाना चाहें, वो नहीं होता, इल्ला ये कि अल्लाह दिल में डाल दे और इल्म का कोई पानी लग जाए। मैंने बहुत सारों को बदलते देखा है, लेकिन अमूमन बूढ़ा इंसान अपने आप को नहीं बदलता। फिर आप उनके बुढ़ापे के लिए, उनकी अर्जल उम्र में और उनके मिजाज के चिड़चिड़ेपन को सामने रख कर सिर्फ ये दुआ मांगिए, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अब आप अपने बच्चों के लिए सोचें, दिल तो आपका भी करेगा कि हमारे बच्चे हमारे लिए ये दुआ मांगे। मैंने इस पर एक अलग से भी लेक्चर दिया हुआ है, फेवरेट दुआ मेरे लिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में 98% सिर्फ यही दुआ मांगी है। दो आती हैं दुआएं, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा और रब्बना हब लना मिन अज़्वाजिना वज़ुर्रियातिना। जब रब्बिरहमहुमा पढ़ती हूँ तो इसमें जो अपने फैमिली, ख़ानदान, माँ बाप, बहन भाई ये, और जब रब्बना हब लना तो शौहर से शुरू करके उनका पूरा ख़ानदान। और मैं कहती हूँ अल्लाह मैंने जो कहना था कह दिया, अब तू खुद जानता है, मेरे पास इतना मौका या वक्त नहीं है कि मैं एक एक की एक एक ज़रूरत को देखूँ। कई दफ़ा इंसान अपने ख़ानदान के कई हालात से बिल्कुल कट ऑफ होता है। मेरे पहले मैं सबसे कम जानती हूँ कि अपने ख़ानदान के लिए, लेकिन जब भी दुआ का मौका मिले मैं इसी सोच के साथ अपने बाप का सोच के, बाप के रिश्तेदारों को कि अल्लाह मुझे क्या पता कौन इस वक्त किस हाल में बैठा हुआ है, मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह उनके ऊपर ये रहम कर दे। लेकिन याद रखिए जो बात सबसे अहम है, जो इस वक्त मेरे आपके इख्तियार में है, क्या हमारे बच्चे हमारे बारे में इस तरह सोचते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी का ख़ुलासा इस एक दुआ को बना लें। वही औलाद सोचती है, और आप भी तभी ज़्यादा सोचेंगे जब सोचना शुरू किया होगा जब आपको दीन मिला। औलाद को तो गिले और शिकवे मिलते हैं। मैं सिर्फ चंद हिंट दे दूँ ना, अगर आपको, आप सब इस अपने प्यारे मुल्क की कदर करें। वेस्ट में माँ बाप बच्चे के लिए जितना कुछ करते हैं, मैं कह सकती हूँ कि यहाँ नहीं करते। यहाँ बिगाड़ की कोशिशें हैं, वहाँ इस्लाह की कोशिशें हैं। मैं पूरे दलाइल के साथ ये बात कर सकती हूँ, क्योंकि माँ बाप को ये गिल्ट तो है ही है ना कि हम गैर मुस्लिम मुल्कों में बैठे हुए हैं, और बाहर गंदगी बहुत है। जो वहाँ के बाशऊर माँ बाप हैं, वो बच्चों की बहुत मेहनत से तरबियत कर रहे हैं। ये गलत है कि वेस्ट में जाने के बाद माँ बाप बच्चों से गाफिल है, बल्कि माएँ कहती हैं अपने मुल्क में थे नानियाँ दादियों ने ही पाल दिए, मस्जिद में भेजा पढ़ के आ गए, बच्चे खुद ही जाते हैं, कारी घर आ रहे हैं। वहाँ ऐसा नहीं है। एक एक बच्चे के लिए माँ दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा गाड़ी से निकलती निकालती है, क्योंकि उनको शऊर है, उनको फिक्र ये कि हमारे बच्चे बिगड़ ना जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नतायज वो नहीं निकल रहे। कुछ माँ बाप जिन्होंने हालात के रहमो करम पे अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो उन्हीं में से अच्छे घर के बच्चे हैं। दो वाक़यात सुनाती हूँ जिससे आपका दिल दहल जाएगा, और दोनों सच्चे बिल्कुल फर्स्ट हैंड मेरे अपने करीब के देखे हुए वाक़यात हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किसी जगह आर्टिकल में पढ़े। एक ऐसी जगह पे मैं मौजूद थी, तो मेरी साथी जो थी, जो हमारी होस्ट भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, माशाल्लाह अंसारुल्लाह भी हैं, तो बड़ी सैड थी। एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी कि आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग। मैंने कहा जी कहिए। कहने लगी कि मेरी बेटी को उसकी एक दोस्त ने इनवाइट किया, एक सरप्राइज़ पार्टी है, क्योंकि कोई ना कोई थीम तो होता ही है ना पार्टी का। उसने अपनी फ्रेंड्स को, यंग बच्ची ने, इनवाइट किया है, और सरप्राइज़ क्या है थीम, आई वॉन्ट टू गिव यू अ सरप्राइज़ एट द एंड ऑफ द पार्टी। समझ तो आई गई होगी कि मैं आपको इस दावत के एंड पे एक सरप्राइज़ दूंगी। तो सारे बहुत कॉन्शियस हैं, पता नहीं क्या अंदर से निकलेगा। इसकी चूँकि वो बेस्ट फ्रेंड थी या क्लोज सर्कट थी या क्या है, जो हमारी साथी, उसकी बेटी को उसने वो सरप्राइज़ पहले ही बता दिया, और वो उसके ज़रिए माँ को पता चला, उसने मेरे साथ बात की, और आपको पता वो सरप्राइज़ क्या था। उस बच्ची ने उस दावत के एंड पे ये अनाउंस किया कि आई एम एथियस्ट नाउ, आई एम नॉट मुस्लिम एनी मोर। कि मैं अपने मुंह से तुम सबको बताने चाह रही थी कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया, और मैं अब एथियस्ट यानी दहरियत हूँ। दहरियाइज़्म तो अब बहुत आम हो गया कि मैं अल्लाह को नहीं मानती, तो बजाय इसके कि तुम बाद में किसी और से सुनती, तो मैंने आज तुम्हें खुद ही बता दिया। अब वो सवाल ये था कि बताएं हम क्या करें, क्या इस दावत में जाएं, उस बच्ची के साथ मिलें, करें कराएं, क्या करें। और वो कोई बिगड़े हुए या बिल्कुल खुदा फरामोश घर से नहीं, माँ बाप मस्जिद के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, यानी हत्तुल वसा जो भी कर सकता है बंदा, लेकिन माशरे का बिगाड़ कहाँ तक बढ़ गया। आप देखिए कि जिन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने के लिए एक माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी जुदाइयों में गुजार देते, मेहनतों में गुजार देते, एंड रिज़ल्ट क्या निकला। और ये दूसरा वाक्य तो बिल्कुल रिसेंट है कि एक बच्चा जो ऐसे ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है, तो उसने कहा कि आई एम वेटिंग फॉर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, किसका, अपनी 18th बर्थडे का, जिस दिन मैं 18 साल का हो जाऊँगा, आई विल नॉट लिव विद यू, मैं नहीं आपके साथ रहूँगा। ये उसने धमकी दो तीन माह पहले दी, क्योंकि वहाँ के लॉज, जिस मुल्क की भी ये बात है, 18 साल तक आप बच्चे को अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, सेपरेशंस हो जाती है, सिंगल पेरेंट्स हैं, मदर्स हैं, जो भी है, उस सूरतों में दोनों सारा कुछ देखे ना, तो 18 ईयर वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी भी 18 के बाद ही आप कर सकते हैं, वैसे आप जिना जितना मर्जी पहले शुरू कर लें, कोई हर्ज की बात नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं अब अगर निकलूंगा तो मुझे पता है आप पुलिस को बुलाएंगे, बच्चे पुलिस ला के फिर मेरे से पूछेगी, तो मैं वेट करूंगा। और यकीन कीजिए कि एग्जैक्टली 2-3 माह के बाद फिर मैसेज मुझे मिला कि आज वो बच्चा अपने घर से चला गया, क्योंकि आज उसकी 18th बर्थडे थी। मैं उसकी माँ को बड़े करीब से जानती हूँ, यकीन करें, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने छाला रखा, जलता हुआ कोयला है। जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत करके इंसान एक मॉडरेट किस्म का रिलीजन भी कबूल करता है, वो बच्चे बाद में आपको ये तोहफा देते हैं। और सेक्स बदलनी है, ये आम बात है, नाम बदल देते हैं। एक बच्चे ने नाम बदला, कि मैं लड़का नहीं अब लड़का, वो ऐसी हॉर्मोन्स खा रहा है कि वो लड़की बने, जिसम से बाल उतरवाने, यानी कट अप अपना लड़कियों वाला करवाना, आखिर क्यों? बहुत ही अहम बात है। देखिए हमारी नस्लें, हमारे बच्चे ईस्ट और वेस्ट के फ़र्क से 19-20 का नहीं तो चलिए, मेरा ख्याल है 15-20 का फ़र्क होगा, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स और किड्स का रिलेशन बदलता जा रहा है। कोशिशें तो बड़ी हैं माँ बाप की, मेहनत भी है, इसलिए आपके मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमारी औलादें हमारे लिए रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा की दुआ करें, तो आज फिक्र करनी है। डरने की बात नहीं है, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरहेज है, ठीक है। ये जो आज का टॉपिक था, इस पर एक बड़ा ही खूबसूरत यानी टॉपिक है, जिसमें 35 वेज टू डू एहसान विद पेरेंट्स। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दें। देखिए कि बास दफ़ा होता क्या है, आप कोशिश बड़ी करते हैं पेरेंट्स को खुश करने की, वो होते ही नहीं है, तो क्या करें? रब्बुकुम आलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा रब खूब जानता है कि जो तुम्हारे दिलों में है। इन तकूनु सालिहीन, अगर तुम नेक हो ना, सालिह बनना चाहते हो, फइन्नहु काना लिल अव्वाबीन गफूरा, वो रुजू करने वालों को बहुत बख्शने वाला है। एक सहाबी ने आकर अल्लाह के नबी से ये सवाल किया था कि मैं कोशिश बड़ा करता हूँ अपने माँ बाप को खुश रखने की, लेकिन तबीयतों का फ़र्क, आदात का फ़र्क, क्या कुछ है, वो खुश नहीं होते। तो उस पर ये बात कही गई कि अगर तुम इखलास के साथ सुकून से उनके साथ अच्छा करते हो, अल्लाह सुबहान ताला तुम्हारे दिल की हालत जानता है। आज हर उस औलाद के लिए, बाज़ औलाद नेक होती है, ये बड़ा अहम मौजू है, माँ बाप का पॉइंट ऑफ व्यू गलत होता है रिश्ता करने में और किसी काम में, बच्चों का अच्छा है, खामोश हो जाए, बोलें कुछ ना, गलत का जवाब ना दें, और रब्बिर हम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा पढ़ते रहें, अल्लाह ताला ज़रूर इस्लाह करेगा। तो जज़ाकअल्लाह खैर, आपने बहुत ही प्यार से बड़ी मोहब्बत से सुना है, अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इसको आसान करे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।